इतिहास में सत्ता का एक बहुत सीधा सा नियम रहा है, जिसके पास जितनी बड़ी सेना
वो उतना ही बड़ा राजा। बिल्कुल
हाँ एकदम, मतलब जब भी किसी महान नेता या किसी बड़े सम्राट का जिक्र होता है ना, तो स्वाभाविक रूप से हमारे दिमाग में एक खास तरह की छवि उभरती है। सोने का मुकुट और विशाल सेनाएं, सफेद घोड़ों पर सवार होकर शान से आना,
और अपने विरोधियों को पूरी तरह कुचल देना, यही तो होता आया है।
वही तो सदियों से मतलब शक्ति का प्रदर्शन ही सत्ता की एकमात्र पहचान मानी जाती रही है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे स्थायी साम्राज्य किसी तलवार या युद्ध से नहीं, बल्कि खामोशी, सेवा और अपमान सहकर जीता गया हो?
ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है,
है ना? ये सत्ता के हमारी जो पूरी परिभाषा है उसी को चुनौती देता है।
बिल्कुल, और मजे दिलचस्प बात यह है कि ये विरोधाभास कोई आधुनिक विचार नहीं है। अगर हम प्राचीन धर्म ग्रंथों की गहराई में जाएं, तो ये अवधारणा सदियों पहले ही गढ़ी जा चुकी थी। ये देखना वाकई बहुत बहुत हैरान करने वाला है कि कैसे प्राचीन भविष्यवाणियां सत्ता और शक्ति के पारंपरिक नजरिए को पूरी तरह से पलट देती हैं।
ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि आज के इस विस्तृत अध्ययन में हम डॉक्टर रॉबर्ट चिशोम के एक बेहद प्रभावशाली शोध की पड़ताल करने वाले हैं। उनका ये शोध मुख्य रूप से यशाया के सर्वेंट गीतों, या जिसे आइजायाज सर्वेंट सॉन्ग्स कहते हैं, उस पर केंद्रित है।
जी, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।
बिल्कुल, और हमारा लक्ष्य आज ये समझना है कि कैसे नए नियम में, यानी अ न्यू टेस्टमेंट में, यीशु के जीवन ने सदियों पुरानी इन रहस्यमयी भविष्यवाणियों को पूरा किया। ये जो आज की चर्चा है ना, ये दिखाएगी कि कैसे प्राचीन ग्रंथों के छोटे छोटे अचूक विवरण मिलकर मतलब एक इतनी विशाल कहानी बुनते हैं, जो इतिहास, धर्मशास्त्र और यहाँ तक कि शक्ति के असली अर्थ को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देती है।
और देखिए, इस शोध की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये केवल मतलब ये ऐतिहासिक घटनाओं की कोई सूची नहीं पकड़ा देता हमें।
हाँ,
ये गहराई से विश्लेषण करता है कि वे घटनाएं आखिर क्यों घटी और उनका असल तंत्र क्या था। जब हम यशाया के इन सेवक गीतों को पढ़ते हैं, तो वे महज कविताएं नहीं लगती।
तो फिर क्या लगती है?
वे एक वास्तुकार के ब्लूप्रिंट की तरह हैं। मतलब वे एक ऐसे सेवक की तस्वीर पेश करते हैं जो तत्कालीन समाज की सत्ता, धर्म और मुक्ति की पूरी धारणा को जड़ से हिला देने वाला था।
और जब हम इस कहानी में प्रवेश करते हैं ना, तो शुरुआत ही हमारी सारी उम्मीदों को तोड़ देती है। मतलब अगर किसी महान राजा को दुनिया में आना है, तो उसके आगमन की घोषणा भी भव्य होनी चाहिए।
बिल्कुल, एक शाही स्वागत होना चाहिए।
हाँ, लेकिन लूका के अध्याय 2 में हमें एक बहुत ही अलग दृश्य देखने को मिलता है। वहाँ मंदिर में एक वृद्ध नबी हैं जिनका नाम शिमेओन है। वो अपनी पूरी जिंदगी एक मसीहा के इंतजार में बिता चुके हैं, और जब वो शिशु यीशु को देखते हैं, तो वो यशाया अध्याय 42 के पहले सेवक गीत का संदर्भ देते हैं।
जी, यशाया 42।
हाँ, और शिमेओन उस बच्चे को अन्य जातियों के लिए प्रकाश कहते हैं, मतलब लाइट टू द जेंटाइल्स।
हाँ,
ये तो कोई छोटी बात नहीं थी ना?
अरे, ये एक बहुत ही क्रांतिकारी बयान था। इसे समझने के लिए हमें उस समय की सामाजिक स्थिति को थोड़ा देखना होगा। पहली सदी का जो यहूदी समाज था, वो रोमियों के अधीन था।
वे गुलाम थे एक तरह से।
बिल्कुल, वे पीड़ित थे और अन्य जातियों यानी गैर यहूदियों को अपना जालिम मानते थे। उनके लिए अगर कोई मसीहा आएगा, तो वो सिर्फ यहूदियों को आजाद कराने और अन्य जातियों को सजा देने के लिए आएगा,
बदला लेने के लिए।
हाँ, लेकिन शिमोन यशाया की भविष्यवाणी को गहराई से समझते हुए ये घोषणा कर रहे हैं कि परमेश्वर की मुक्ति की योजना किसी एक राष्ट्र या समुदाय तक सीमित नहीं है। ये उन लोगों तक भी पहुंचेगी जिन्हें दुश्मन माना जाता था। ये एक वैश्विक स्तर की योजना की शुरुआत थी।
ये तो सिर्फ शुरुआत है। जब ये बच्चा बड़ा होता है और यीशु अपनी सार्वजनिक सेवा शुरू करते हैं, तो उनका बपतिस्मा होता है, और यहीं पर एक आम इंसान का दिमाग पूरी तरह से उलझ जाता है। मैं जब ये पढ़ रही थी तो सोच में पड़ गई।
हाँ, वो दृश्य ही ऐसा है।
मतलब अगर कोई दुनिया का उद्धार करने आ रहा है, तो वो सीधे यरूशलेम के राजमहल में क्यों नहीं जाता? इसके बजाय वो यर्दन नदी के किनारे मन पश्चाताप करने वाले आम पापियों की लंबी कतार में चुपचाप खड़ा हो जाता है,
एकदम आम इंसान की तरह।
हाँ, अगर मैं इसे आज के संदर्भ में समझने की कोशिश करूं, तो ये कुछ ऐसा है जैसे जैसे किसी देश का सबसे बड़ा अरबपति नेता हो जिसके पास सत्ता की हर चाबी है और वो अपनी आलीशान बुलेट प्रूफ शाही कार छोड़कर आम जनता की तकलीफ और पसीने की गंध को महसूस करने के लिए गर्मी के मौसम में ट्रेन के खचाखच भरे जनरल डिब्बे में सफर कर रहा हो। मतलब एक राजा का इस तरह खुद को जमीन पर लाना उस समय के लोगों के लिए कितना अजीब रहा होगा।
देखिए, तत्कालीन समाज के लिए ये केवल अजीब नहीं था बल्कि मैं पूरी तरह से अकल्पनीय था। उस समय का यहूदी समाज वास्तव में एक सैन्य विजेता की ही उम्मीद कर रहा था,
एक योद्धा की।
जी, उनके इतिहास में मैकबीज नामक एक विद्रोही समूह का उदाहरण बहुत ताजा था, जिन्होंने कुछ पीढ़ियों पहले ही तलवार और गुरिल्ला युद्ध के दम पर यरूशलम को वापस हासिल किया था। तो लोगों के दिमाग में मसीहा का यही ब्लूप्रिंट था कि एक योद्धा आएगा जो तलवार उठाएगा और रोमियों का खून बहा देगा। डीकिन यशु पापियों की कतार में खड़े होकर खुद को उनके साथ जोड़ रहे हैं। वो किसी को मारने नहीं बल्कि यशाया 53 के उस पीड़ित सेवक की भूमिका निभाने आए हैं जो दूसरों के पापों का भार अपने कंधों पर उठाने वाला था।
और यहीं पे वो घटना होती है जिसने मुझे मार डॉक्टर चेशोल्म के शोध में सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। जब यशु पानी से बाहर आते हैं तो आसमान से एक आवाज आती है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ।
जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पल है।
अब अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये आवाज दो अलग अलग धर्मशास्त्रों को एक साथ मिला रही है। एक हिस्सा मुझे भजन संहिता के अध्याय 2 की याद दिलाता है,
जो कि एक शाही भजन है।
हाँ, जो एक शक्तिशाली राजा के राज्याभिषेक का गीत है जो दुश्मनों को लोहे के डंडे से तोड़ देगा। लेकिन दूसरा हिस्सा यशाया 42 की उस पंक्ति जैसा लगता है जो एक शांत और नम्र सेवक के बारे में है। तो माँ, क्या ये दोनों बातें आपस में टकरा नहीं रही?
यही तो इस पूरी कहानी का सबसे शानदार मोड़ है। भजन संहिता 2 की आयत 7 कहता है, तू मेरा पुत्र है, जो एक विजयशाही मसीहा की तस्वीर है। और यशाया 42 की पहली आयत कहती है, ये मेरा सेवक है जिससे मेरा जी प्रसन्न है।
दोनों बिल्कुल अलग छवियां।
बिल्कुल। और आसमान से आई वो एक आवाज इन दो चरम विरोधाभासों को एक ही व्यक्ति में समाहित कर देती है। उसी एक क्षण में ये स्पष्ट हो जाता है कि ये व्यक्ति एक महान राजा भी है और एक नम्र सेवक भी। राजशाही की महिमा और सेवक की पीड़ा, ये दोनों अब अलग अलग नहीं बल्कि एक ही मिशन के दो हिस्से बन चुके थे।
यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। क्योंकि अगर वो एक शक्तिशाली राजा भी है तो मत्ती के अध्याय 4 में जब वो बीमारों को ठीक करना शुरू करता है तो वो केवल एक डॉक्टर की तरह काम नहीं कर रहा है। डॉक्टर चेशोल्म इसे स्पष्ट करते हैं कि ये चंगाई कोई साधारण चमत्कार या जादू का खेल नहीं था, ये किसी बहुत बड़ी चीज का प्रतीक था।
जी बिल्कुल। इसे इस नजरिए से देखिए कि प्राचीन काल में और विशेष रूप से बाइबल के धर्मशास्त्र में बीमारियों, दर्द और मृत्यु को केवल जैविक समस्याएं नहीं माना जाता था।
अच्छा, तो फिर क्या माना जाता था?
उन्हें पाप के परिणाम या उस मूल आध्यात्मिक पतन के लक्षणों के रूप में देखा जाता था जिसने पूरी दुनिया को भ्रष्ट कर दिया था। इसलिए जब यीशु लोगों को ठीक कर रहे थे, अंधों को दृष्टि दे रहे थे या कोढ़ियों को शुद्ध कर रहे थे, तो वो केवल लक्षणों का इलाज नहीं कर रहे थे,
वे बीमारी की जड़ पर वार कर रहे थे।
एकदम सही, वे पाप के मूल कारण पर हमला कर रहे थे। ये एक तरह का आध्यात्मिक युद्ध था, रोमियों के खिलाफ नहीं बल्कि उस बुराई के खिलाफ जिसने मानवता को जकड़ रखा था। और ये खबर केवल यहूदियों तक नहीं रुकी।
हाँ, ये तो सीरिया और दकापुलिस जैसे गैर यहूदी इलाकों तक भी फैल गई थी।
जी, जो कि यशाया के उस अन्य जातियों के लिए प्रकाश वाले वादे का सीधा प्रमाण था।
लेकिन माँ, अगर उसके पास इतनी बड़ी शक्ति है और वो सचमुच दुनिया को बदल सकता है, तो एक बात मेरे लिए बिल्कुल समझ से परे है। मत्ती अध्याय 12 में हम देखते हैं कि जैसे ही यहूदी नेताओं की ओर से थोड़ा विरोध या उत्पीड़न शुरू होता है, यशु पीछे हट जाते हैं।
वो एक कदम पीछे लेते हैं।
वो लोगों को ठीक तो करते हैं लेकिन फिर उनसे सख्ती से कहते हैं कि कृपया इसके बारे में किसी को मत बताना। विद्वान इसे मसीहाई रहस्य या मैसियानिक सीक्रेट कहते हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर किसी के पास दुनिया को बचाने की शक्ति है तो वो खामोश क्यों रहना चाहता है? वो अपना कोई पीआर अभियान क्यों नहीं चलाता?
ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है।
मतलब वो क्यों नहीं चाहता कि लोग उसे राजा माने?
इसके पीछे का कारण माँ बहुत ही व्यावहारिक और राजनीतिक दोनों था। पहली सदी के फिलिस्तीन में जो राजनीतिक माहौल था ना, वो एक बारूद के ढेर जैसा था।
हाँ, रोमी साम्राज्य बहुत क्रूर था।
बिल्कुल, रोमन गवर्नर जैसे कि पोंतियुस पिलातस किसी भी विद्रोह की जरा सी भनक लगती हजारों लोगों को क्रूस पर चढ़ा देते थे। अगर यीशु सार्वजनिक रूप से खुद को राजा घोषित कर देते या अगर भीड़ उन्हें जबरदस्ती राजा बना देती
तो तुरंत एक खूनी क्रांति भड़क उठती
एकदम, और बहुत खून बहता। लेकिन यशाया के पहले गीत में यह भविष्यवाणी की गई थी कि यह सेवक सड़कों पर शोर नहीं मचाएगा और वो बुझती हुई लौ को नहीं बुझाएगा।
ये बुझती हुई लौ का क्या मतलब है यहाँ?
बुझती हुई लौ का मतलब है समाज के कमजोर, टूटे हुए और शोषित लोग। यीशु का मिशन एक न्यायपूर्ण समाज के स्थापना के लिए शांति और गहरे दुख सहने के रास्ते पर चलना था। अगर वो भीड़ का राजनीतिक मोहरा बन जाते तो वे कमजोर लोग उस राजनीतिक विद्रोह की आग में कुचले जाते।
ओह, तो वो उन्हें बचाना चाहते थे, उनका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे।
जी बिल्कुल,
ये स्पष्टीकरण तो बहुत सी गुत्थियां सुलझा देता है। और शायद यही कारण है कि रूपांतरण या जिसे ट्रांसफिगरेशन कहते हैं, वो घटना इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है। बहुत महत्वपूर्ण।
जो श्रोता इस घटना से परिचित नहीं है उनके लिए मैं बता दूं कि ये वो समय था जब यीशु अपने तीन शिष्यों को एक ऊंचे पहाड़ पर ले गए थे। वहां अचानक उनका रूप बदल गया, वे एक अलौकिक रोशनी से चमकने लगे और उनके साथ मूसा और एलिया दिखाई दिए। ये एक ऐसा पल था जहां यीशु की वो छिपी हुई शाही महिमा अचानक सामने आ गई। लेकिन वहां भी आसमान से वही आवाज आती है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, जो फिर से उसी सेवक गीत की याद दिलाती है।
देखिए, तथ्य ये है कि पहाड़ पर वो अलौकिक महिमा और नीचे घाटी में सलीब का दुख, ये दोनों कभी अलग नहीं हुए। रूपांतरण की वो घटना शिष्यों को केवल ये दिखाने के लिए थी कि भले ही ये सेवक जल्द ही गिरफ्तार होने वाला है, पीटा जाने वाला है और मारा जाने वाला है, लेकिन उसके पास ब्रह्मांड का सर्वोच्च अधिकार है।
उसने अपनी मर्जी से शक्ति का त्याग किया है।
बिल्कुल,
किसी मजबूरी में नहीं।
अब यहाँ से हम महायशाया की किताब की उस विशेष संरचना पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो यीशु के इस छिपे हुए तरीके को और भी स्पष्ट करती है। यशाया अध्याय 42 में हमने पहला सेवक गीत देखा, लेकिन दूसरा गीत सीधे अध्याय 49 में आता है।
जी, बीच में एक बड़ा अंतराल है।
हाँ, बीच में 7 अध्यायों का एक बहुत बड़ा अंतराल है। डॉक्टर चिशोल्म बताते हैं कि इन बीच के अध्यायों में, विशेषकर 44 और 45 में, फारस के राजा कुसरू या साइरस का लंबा वर्णन है। अब माँ, मुझे ये बताइए, एक परमेश्वर के नबी की किताब में जो मसीहा के बारे में भविष्यवाणी कर रही है, अचानक एक विदेशी गैर यहूदी राजा का जिक्र क्यों आता है?
कुसरू का जिक्र यहाँ एक बहुत ही गहरे उद्देश्य से किया गया है। ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखें तो जब इजरायली बेबीलोन के निर्वासन में थे, वे अपनी जमीन, अपना मंदिर, सब कुछ खो चुके थे। तब कुसरू, जो एक पारसी सम्राट था, बेबीलोन पर विजय प्राप्त करता है और इसराइलियों को वापस यरूशलेम जाने की अनुमति देता है।
उसने उन्हें आजाद किया।
जी, और यशाया की किताब में परमेश्वर कुसरू को अपना अभिषिक्त कहते हैं। यह चौंकाने वाला था क्योंकि कुसरू यहूदी परमेश्वर को नहीं मानता था, वो महज एक राजनीतिक और सैन्य ताकत था। लेकिन परमेश्वर उसे एक तात्कालिक साधन के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे।
अगर हम इसे एक रूपक के जरिए समझने की कोशिश करें तो कुसरू महज एक भारी भरकम बुलडोजर की तरह है।
बुलडोजर, हाँ, ये एक अच्छा रूपक है।
मतलब उसका काम सिर्फ इतना है कि वो बेबीलोन के साम्राज्य रूपी मलबे को हटाए, रास्ता साफ करे और जमीन को समतल करे। लेकिन एक बुलडोजर उस जमीन पर कुछ बना तो नहीं सकता ना, वो वास्तुकला नहीं जानता।
बिल्कुल सही।
जबकि यशाया का ये जो सेवक है वो मुख्य वास्तुकार है, वो उस साफ की गई जमीन पर वास्तव में एक नया, खूबसूरत और स्थायी घर बनाएगा।
ये एक बेहद सटीक रूपक है। अब यशाया का साहित्यिक पैटर्न देखें। अध्याय 42 में वो पहले उस वास्तुकार यानी सेवक की एक छोटी सी झलक देता है, फिर वो बुलडोजर यानी कुसरू का विस्तार से वर्णन करता है कि कैसे कुसरू दुनिया की राजनीति में उथल पुथल मचाकर इसराइल को वापस लाएगा।
एक भौतिक वापसी।
जी, कुसरू केवल एक भौगोलिक और राजनीतिक बदलाव लाता है, लेकिन परमेश्वर की मुक्ति की जो असली, अंतिम और अभव्य आध्यात्मिक योजना है ना, जिसमें पाप और मृत्यु पर विजय शामिल है, उसे केवल वो सेवक ही अंजाम दे सकता है। भविष्यवक्ता अक्सर इन तात्कालिक राजनीतिक घटनाओं का उपयोग करके ये सिखाते हैं कि परमेश्वर की योजनाएं मनुष्यों की समझ से कहीं ज्यादा गहरी और छिपी हुई होती हैं।
और ये हमें सीधे अध्याय 49 यानी दूसरे सेवक गीत की ओर ले जाता है, जहां इस वास्तुकार का काम विस्तार से बताया गया है। इस गीत में सेवक कहता है कि परमेश्वर ने उसके मुंह को एक तेज तलवार की तरह और उसे एक तीखे तीर के समान बनाया है। अब देखिए, मैं तलवार और तीर सुनते ही हमारे दिमाग में तुरंत एक सैन्य योद्धा की छवि बनती है।
स्वाभाविक है,
लेकिन जैसा कि डॉक्टर चिशॉन स्पष्ट करते हैं, ये बिल्कुल भी भौतिक युद्ध की बात नहीं है।
नहीं नहीं, ये भौतिक हिंसा नहीं है। यहाँ मुंह की तलवार का अर्थ है उसके शब्दों की असीम शक्ति। ये सेवक एक शक्तिशाली नबी के रूप में कार्य कर रहा है। उसके शब्द इतने प्रभावशाली, सच्चे और अचूक हैं कि वे सीधे लोगों के दिलों के अहंकार और झूठ को भेद सकते हैं। वो रोमन सेनाओं से नहीं लड़ रहा था, बल्कि वो सच्चाई और परमेश्वर के वचनों से उस पाखंड के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था जिसने उस समय धर्म को खोखला कर दिया था।
लेकिन मत्ती, इसी गीत के अध्याय 49 में एक ऐसी बात है जिसने मुझे पूरी तरह से भ्रमित कर दिया। आयत 3 में परमेश्वर उस सेवक को स्पष्ट रूप से इसराइल कहकर बुलाते हैं, लेकिन उसकी ठीक बाद की आयतों में ये भी कहा गया है कि इस सेवक का मुख्य काम निर्वासित इसराइल को वापस परमेश्वर के पास लाना है।
जी,
तो तकनीकी रूप से ये कैसे संभव है? अगर उस सेवक का नाम खुद इसराइल है तो वो इसराइल को ही कैसे बचा सकता है? क्या ये माप पूरी तरह से विरोधाभासी नहीं है?
ये बाइबल धर्मशास्त्र का एक बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण पहलू है। इसे समझने के लिए हमें टाइपोलॉजी की अवधारणा को समझना होगा।
टाइपोलॉजी?
जी, इसे ऐसे देखिए कि परमेश्वर ने प्राचीन इसराइल राष्ट्र को पूरी दुनिया के लिए एक प्रकाश बनने और एक आदर्श समाज का उदाहरण पेश करने के लिए चुना था।
हाँ, उनका यही उद्देश्य था।
लेकिन वो राष्ट्र अपने इस उद्देश्य में पूरी तरह विफल रहा। उन्होंने पाप किया और अंततः निर्वासन का सामना किया। अभी जो नया सेवक है यानी यीशु, वह एक आदर्श इसराइल के रूप में उभरता है। वह अकेला व्यक्ति उस पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, उनके एक स्टैंड इन के रूप में।
अच्छा, मतलब जो काम पूरा राष्ट्र नहीं कर पाया।
बिल्कुल, जो काम लाखों लोगों का राष्ट्र करने में विफल रहा, वह काम एक अकेला व्यक्ति परमेश्वर की ओर से पूरी तरह से आज्ञाकारी रहकर पूरा करता है।
ओ, अब जाकर कड़ियां जुड़ रही हैं, मुझे समझ आ रहा है। इसी वजह से मत्ती ने होशे 11 की उस आयत की भविष्यवाणी का इस्तेमाल किया था कि मिस्र से मैंने अपने पुत्र को बुलाया। मैं पुराना इसराइल राष्ट्र मिस्र की गुलामी से निकला था, लेकिन जब वे जंगल में पहुंचे तो वे 40 साल तक भटकते रहे, शिकायत करते रहे और अपरीक्षा में पूरी तरह विफल हो गए।
Exactly. और इसके विपरीत, जब यीशु यानी वो आदर्श इसराइल आते हैं तो बपतिस्मा के तुरंत बाद वे भी जंगल में जाते हैं।
हाँ, 40 दिन के लिए।
वे वहाँ 40 दिन बिताते हैं और शैतान उनकी परीक्षा लेता है। जहाँ पुराना इसराइल भोजन और सत्ता की लालसा में विफल हो गया था, वहाँ यीशु सफल होते हैं। और सबसे दिलचस्प बात में ये है कि जब शैतान उन्हें लालच देता है तो यीशु हर बार व्यवस्था विवरण यानी ड्यूटरोनमी की किताब का हवाला देकर जवाब देते हैं।
और ये वही किताब है जिसमें पुराने इसराइल की जंगल की विफलताओं का वर्णन है।
बिल्कुल, यीशु साबित कर रहे हैं कि वो सच्चे और आज्ञाकारी पुत्र हैं जो उस इतिहास को फिर से लिख रहे हैं, लेकिन इस बार पूर्ण सफलता के साथ।
ये वाकई शानदार है। मतलब इतिहास खुद को दोहरा रहा है, लेकिन इस बार सही तरीके से। अब इस आदर्श इसराइल का काम केवल कुछ लोगों को किसी एक जमीन के टुकड़े पे ले जाना तो नहीं है। डॉक्टर चिशोल बताते हैं कि ये एक नई वाचा और एक नए निर्गमन यानी न्यू एक्सोडस की शुरुआत है। दूसरे गीत में ये भविष्यवाणी की गई है कि इस सेवक को राष्ट्रों द्वारा तुच्छ जाना जाएगा और वो शासकों का सेवक बनेगा।
जी,
यह हमें सीधे तौर पर याद दिलाता है कि कैसे यीशु रोमन गवर्नर पिलातुस और राजा हेरोदेस के सामने एक असहाय कैदी की तरह खड़े थे। लेकिन मगर भविष्यवाणी आगे ये भी कहती है कि अंततः बड़े बड़े राजा उसके सामने झुकेंगे।
और वो केवल एक कैदी नहीं है, बल्कि वो एक वाचा का मध्यस्थ बनेगा। यशाया कहता है कि वो कैदियों को अंधेरे से बाहर निकालेगा और उन्हें पानी के झरनों तक ले जाएगा।
ये तो बहुत कुछ मूसा जैसा लग रहा है।
एकदम, इन शब्दों को सुनते ही प्राचीन काल के किसी भी श्रोता के दिमाग में तुरंत मूसा की छवि उभर आती। मूसा ने लोगों को मिस्र की गुलामी के अंधेरे से निकाला था और उन्हें चट्टान से निकले पानी और आजादी तक ले गए थे। यहाँ यीशु को एक नए मूसा के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।
एक नया मूसा जो एक नया निर्गमन ला रहा है।
हाँ, लेकिन ये नया निर्गमन सिर्फ मिस्र की सीमाओं से नहीं हो रहा है, ये दुनिया के हर दिशा से, हर जाति से हो रहा है। ये एक वैश्विक स्तर का छुटकारा है।
तो इस सबका असल मतलब क्या है? क्या ये नया निर्गमन बस सिर्फ एक भौगोलिक यात्रा है जहां लोगों को एक देश से निकालकर दूसरे देश में बसा दिया जाएगा, या ये मानवीय सोच, पाप और समाज की उस पूरी व्यवस्था को ही पलट देने के बारे में है जिसे हम आज तक सच मानते आए हैं?
ये बहुत ही गहरा सवाल है,
क्योंकि इस बिंदु पर डॉक्टर चिशोलम ने यशाया 55 का जो संदर्भ दिया है ना, वो इस पूरी पहेली को सुलझा देता है।
यशाया 55 इस पूरी चर्चा का एक बहुत ही खूबसूरत और दार्शनिक शिखर है। वहां परमेश्वर कहते हैं कि मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं है और मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है।
हाँ, हम अक्सर सोचते हैं कि इसका मतलब यह है कि परमेश्वर इतने महान है कि हम इंसान उन्हें समझ ही नहीं सकते।
अक्सर यही अर्थ निकाला जाता है, लेकिन अगर हम इसके आसपास की आयतों को देखें, विशेष रूप से आयत 7 को, तो वहां लिखा है कि दुष्ट अपने मार्ग को छोड़ दे क्योंकि परमेश्वर बहुतायत से क्षमा करेगा। इसका सीधा मतलब यह है कि ये आयत परमेश्वर के रहस्य के बारे में नहीं है, बल्कि उनकी क्षमा करने की उस असीमित क्षमता के बारे में है जो इंसानी सोच से बिल्कुल अलग है।
ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य का प्राकृतिक स्वभाव क्या है? अगर कोई हमें चोट पहुंचाता है तो हम बदला लेने की सोचते हैं। हमारी न्याय की परिभाषा तो सजा देने पर ही टिकी है ना?
बिल्कुल, हमारी योजनाएं स्वार्थ, क्रोध और प्रतिशोध से भरी होती हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कि उनका मार्ग बदला लेने का नहीं बल्कि अनुग्रह का है। ये जो नया निर्गमन है, ये इंसान को एक भौगोलिक स्थान से दूसरी जगह ले जाने के बारे में नहीं है।
तो ये किस बारे में है?
ये इंसान को पाप, अपराध बोध और स्वार्थ की उस गहरी कैद से निकालकर क्षमा और आध्यात्मिक आजादी की एक नई भूमि में ले जाने के बारे में है।
परमेश्वर के ये वादे उस बारिश और बर्फ की तरह है जो आसमान से जमीन पर गिरकर अपना काम, यानी बीजों को जीवन देना, पूरा किए बिना वापस नहीं लौटते।
और ये सब मगर केवल उस पीड़ित सेवक के उस खामोश लेकिन महान बलिदान के माध्यम से ही संभव हो सका है।
ये सच में अविश्वसनीय और बहुत ही गहरी यात्रा रही है। तो अगर इस पूरे अध्ययन को समेटा जाए तो ये स्पष्ट होता है कि यशाया के सेवक गीतों में वर्णित ये राजा हमारी हर उम्मीद, हर पूर्वाग्रह के बिल्कुल उलट काम करता है। वह माँ शक्ति का प्रदर्शन करने के बजाय बपतिस्मा की कतार में एक आम पापी की तरह खड़ा होता है।
बिल्कुल,
वो तलवार से नहीं बल्कि अपने प्रभावशाली शब्दों की शक्ति से दिलों को जीतता है। वो कोई राजनीतिक पीआर अभियान नहीं चलाता, बल्कि शांति से दुख सहकर दुनिया के पापों का भार उठाता है। और अंततः वो एक ऐसे नए मूसा के रूप में उभरता है जो एक बिल्कुल नया रास्ता तैयार करता है, एक ऐसा रास्ता जो भौतिक गुलामी से नहीं बल्कि हमारे अपने ही पापों और अहंकार की कैद से हमें बाहर निकालता है। डॉक्टर चिशोलम का शोध हमें यही दिखाता है कि पुराने नियम की ये भविष्यवाणियां और यीशु का जीवन अलग अलग घटनाएं नहीं हैं।
जी नहीं, बिल्कुल नहीं,
बल्कि ये एक ही धागे से बुनी गई एक परिपूर्ण कहानी है।
और ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि सच्ची महानता दूसरों पर राज करने में नहीं बल्कि दूसरों के लिए खुद को समर्पित कर देने में है। न्याय, करुणा और क्षमा अंततः हर उस सैन्य या राजनीतिक शक्ति से बड़े साबित होते हैं जिसे मनुष्य इतना महत्व देता है।
बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसे ही हम आज की इस गहन चर्चा को समाप्त कर रहे हैं, एक ऐसा विचार है जो मुझे हम सभी को अपने साथ लेकर जाना चाहिए। हमने देखा कि ये नया मूसा अपने लोगों को एक नए निर्गमन पर ले जा रहा है जो किसी नक्शे पर आधारित यात्रा नहीं बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक आजादी है। तो जरा सोचिए, अगर आज का ये निर्गमन आध्यात्मिक है तो क्या ये संभव है कि हम सभी आज भी किसी न किसी मिस्र की गुलामी में जी रहे हैं? क्या हमारी वो गुलामी दरअसल वे अवैध धारणाएं हैं जिन्हें हम शक्ति, सफलता और दिखावे के बारे में परम सत्य मानते हैं? हम अक्सर ताकत और पद को ही सब कुछ मानते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उस समय के लोग एक महान योद्धा राजा की उम्मीद कर रहे थे। अगर सच्ची आजादी नम्रता, सेवा और क्षमा में है, तो हमारे लिए वो नया वादा किया हुआ देश वास्तव में कैसा दिखता है? क्या हम उस अनजान लेकिन शांतिपूर्ण रास्ते पर चलने के लिए अपनी पुरानी मान्यताओं को पीछे छोड़ने के लिए तैयार हैं? इसी गहरे सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।